खुदावन के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्र हो कि उसने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्श दिया कि जमीन पर उसकी हम और सताइश करें, उसके नाम को धन्यवाद कहें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार उसकी प्रस्तश रूह और सच्चाई से करें। सो आए हम खुदावन के हजूर झुक जाएं, खामोशी में अपने अपने दिल की हालत का जायजा लेंगे। अगर किसी तरह की कमी कमजोरी, कोई भी बात हमारी तवज्जो को खुदावन की तरफ से हटाती है तो अपनी सारी तवज्जो को खुदावन के तरफ लगाएंगे। अगर किसी तरह की कमी कमजोरी, गुनाह, गलती, खता है तो खामोशी में उसके फजल के तख्त के पास आएंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों के लिए वादा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, जब भी आपकी रफाकत में कोई कमी कमजोरी है उसके हजूर आने की जरूरत है। सो आए इस बात को अपने जहन में रखते हुए खुदावंद के हजूर चुके। कादर मुतलक खुदा मसीह यस्सु में आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त आज की सुबह में तेरे फजल के पास, तेरे फजल के बायस तेरे तख्त के सामने आते हैं। और खुदावंद तेरे फजल के लिए जो हर सुबह तेरे ईमानदारों के लिए ताजा है, तेरा शुक्र करते हैं। अपने मुल्क के लिए खुदावंद, मुल्क के सारे हालात के लिए, मौजूदा कलीसियाओं के लिए, और खासकर खुदावंद खुदा आज इस वक्त इन तमाम ईमानदारों के लिए जो तेरी हजूरी में बैठे हैं, हम सबको हमारी जरूरत के मुताबिक अपने कलाम की सच्चाइयों से सेर और सुदा कर। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सो मेरे साथ निकालें लूका की इंजील, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावन यीशु मसीह की इंजील, उसका 19वां बाब। पिछले दिनों में जैसा हमने 10वीं आयत को देखा कि क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है, और हमने इस पर सीखा कि यीशु मसीह का आने का जमीन पर मकसद क्या है, खोए हुओं को, शिकस्ता दिलों को, बीमारों को, अंधों को, हर तरह की तारीकी और अबतरी में जो लोग खोए हुए हैं उनकी हौसला फजाई और उनकी रहाई के लिए वो आया है। आपको याद होगा कि आजादी, रहाई आसानी से हासिल नहीं होती। किसी भी मुल्क में जब कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है मुल्क की आजादी के लिए तो वो आसान नहीं होती, आजादी मुफ्त नहीं मिलती। जैसे हमारे मुल्क के लिए सालों साल पहले हमारे मुल्क की फौज ने जंग लड़ी और आजादी हासिल की, और उस आजादी को हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान दी, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने बनी नू इंसान की आजादी, बनी नू इंसान की मखलसी, बनी नू इंसान के छुटकारे के लिए, बनी नू इंसान के दरमियान जो खुदा के साथ रुकावट, गुनाह की रुकावट थी, उस दीवार को ढाने के लिए अपनी जान का फिदिया दिया, और नजात और ये रूहानी आजादी मुफ्त नहीं, इसका किसी ना किसी ने क्या किया है, फिदिया दिया है। और वो फिदिया देने वाली शख्सियत जो बादशाहों का बादशाह, जो खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आया और अपने आप को खाली कर दिया ताकि हम उसके गरीब बन जाने से दौलतमंद हो जाएं। सो यीशु मसीह है जिसने हमारी रूहानी, पूरी दुनिया की रूहानी आजादी को खरीदने के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया, और यही यीशु मसीह का आने का मकसद है, जिसे पालूस रसूल कहता है कि इब्ने के पालूस रसूल कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी, मगर ہر ایک کے لیے جو اس پر ایمان یعنی کہ یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے خدا کی قدرت اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سو آج ہم گیارہویں آیت کے اگلے حصہ میں بڑھیں گے۔ سو گیارہویں آیت میں یوں لکھا ہے، جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی۔ ہم نے اس پر دیکھا کہ کون سی باتیں، ہم نے اس پر دیکھا ان وہ لوگوں میں وہ تمام لوگ ہیں جو کہ ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھا، وہ بڑی بھیڑ ہے، اور اس تمام لوگوں میں کیا ہیں، وہ تمام یسوع مسیح کے شاگرد شامل ہیں سب۔ وہ جب ان باتوں کو سن رہے تھے، اور وہ کون سی باتیں ہیں، ہم نے پیچھے بیوہ کی تمثیل کو دیکھا، فریسی اور مسول لینے والے کی تمثیل کو دیکھا، اور پھر ایک امیر آدمی کو دیکھا جس نے نجات کو رد کیا اور اپنی دولت کو چناؤ کیا، دولت کا چناؤ کیا، پھر اندھے کو دیکھا، اور پھر زکائی کو دیکھا۔ سو یہ وہ باتیں وہ سن رہے تھے، تو یسوع مسیح نے ان سے کیا کہی، ایک تمثیل کہی۔ آج ہم دیکھیں گے، جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے یعنی یسوع مسیح نے ان سے ایک تمثیل کہی۔ تمثیل کا مطلب ہے کہاوت، مقولہ، یا کسی گہری بات کی سچائی کا اظہار کرنا، کسی بھید کو، کسی سچائی کو بیان کرنا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح ان سے تمثیل میں بات کرنے کو جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یوں لکھا ہے، جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی، اس لیے کہ یروشلم کے نزدیک تھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ پس اس نے، یہ وہ تمثیل ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتانا شروع کی، پس اس نے کہا، ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دی اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا۔ یہ تمثیل یسوع مسیح یہاں پر انہیں، اپنے شاگردوں کو اور سننے والے تمام لوگوں کو کہتا ہے۔ سو تمثیل سے مراد کہاوت، کہنا کچھ اور اس کا روحانی طور پر مطلب کچھ۔ اور اس تمثیل میں سے ہم بہت گہری سچائیاں سیکھیں گے جو ہماری روحانی ترقی کے لیے فائدہ کا باعث ہے۔ سو تمثیل سے مراد کہاوت، تمثیلی طور پر، مثالی طور پر کسی سچائی کو بیان کرنا۔ جب ہم تمثیل کو دیکھتے ہیں، اور نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح زیادہ تر تمثیل میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیوں؟ جب ہم نئے عہد نامے کا 4 اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو 32 دفعہ یسوع مسیح نے تمثیل کہیں ہیں، اور ان 32 تمثیل میں یسوع مسیح گہرے بھید کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور تمثیل کا مطلب کہ کسی کی توجہ کو حاصل کرنا، کسی بات کو کہنا، اور لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہونا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تمثیل کہی۔ کیوں یسوع مسیح تمثیلوں میں بات کرتا ہے؟ زبور نویس، داؤد نبی کو ہم دیکھتے ہیں، اور زبور نویس ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتا ہے، جب زبور 78 کو دیکھتے ہیں، 78 اس کی دوسری آیت میں، پہلی اور دوسری آیت میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے۔ آپ اس حوالہ کو نوٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے، اے میرے لوگوں، میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ اور وہاں پر لکھنے والا خدا کا خادم یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہاں پر لکھا ہے، میں تمثیلوں میں کلام کروں گا۔ یسوع مسیح کے بارے میں زبور نویس بتاتا ہے کہ اس سے پہلے وہ زمین پر آئے، زمین پر زندگی بسر کرے، اپنے لوگوں کو تعلیم دے، اپنے منہ سے کلام کرے، اس کا کلام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تمثیلوں میں کلام، گہرے بھیتوں کو بیان کرنا تاکہ لوگ उस बात पर तवज्जो दें। सो यसु मसीह के बारे में ये बात कलाम खुदा में दर्ज है कि वो तमसीलों में बात करेगा, इसीलिए 32 दफा यसु मसीह तमसीलों में बात करते हुए नजर आते हैं और ये 4 अनाजील में हमें इसका जिक्र मिलता है। और यहां पर ये पहली बात है कि वो इन बातों को सुन रहे थे और यसु मसीह ने तमसील में उनसे बात की, इसलिए कि यरूशलम के नजदीक था, इसलिए कि यरूशलम के नजदीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। यहां पर लोग शिगिर्द इस बात के बारे में सोच रहे हैं, उनका सोचना ये था, उनका ख्याल ये था कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर होगी। और यहां पर क्या बात है कि यसु मसीह और उसके शिगिर्द यरूशलम के नजदीक है। यहां पर हम देखते हैं कि यरूशलम के नजदीक था, यरूशलम में क्या होने को जा रहा है, क्यों यसु मसीह ने इस अमीर आदमी की तमसील दी कि वो दूर दराज मुल्क को गया। यहां पर हम देखते हैं कि क्यों यसु मसीह ने ये तमसील कही अपने शिगिर्दों से और सुनने वाले लोगों से। मेरे साथ 18वें बाब की 31वीं आयत को देखें, यहां पर हमें जिक्र मिलता है 31वीं आयत में, फिर उसने उन 12 को साथ लिया, यानी वो 12 शिगिर्द साथ लिया, उनसे कहा, देखो हम यरूशलम को जाते हैं और जितनी बातें नबी की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक में पूरी होंगी। सो यहां पर यसु मसीह और उसके शिगिर्द और तमाम सुनने वाले लोग क्या हैं, यरूशलम के नजदीक हैं। सो यरूशलम में क्या होगा, 31वीं आयत से हम देखते हैं कि जो बातें इब्ने आदम के हक में लिखी हैं नबियों की मार्फत, यानी के वो हजारों 100 के हिसाब से जो नबूतें खुदावंद यसु मसीह के बारे में की गई हैं कि वो औरत की नजर से पैदा होगा, वो इस दुनिया में जन्म लेगा और वो सलीब पर अपनी जान देगा और फिर मुर्दों में से जी उठेगा और खुदा के दाही हाथ बैठ जाएगा। सो ये बातें जब वो यरूशलम के नजदीक थे तो वो क्या होने वाला है यरूशलम में, 31वीं आयत में इस बात का हमें जवाब मिलता है कि यरूशलम में क्या होने को जाने वाला है। फिर उसने उन 12 को साथ लिया लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलम को जाते हैं और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक में पूरी होंगी। 32वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, क्योंकि वो गैर कौमों के क्या किया जाएगा, हवाले किया जाएगा। यहां पर हम देखते हैं कि यहूदी लोग, वहां के फकी फरीसी और सरदार सब मत्ती 27 बाब के मुताबिक यसु मसीह को पकड़वाएंगे और पिलातूस हुक्म देगा उसे सलीब चढ़ाने का। सो यहां पर वो तमाम बातें यसु मसीह ने कहा कि जो नबी की मार्फत लिखी गई हैं पूरी होंगी, जिसे जबूर 22 में दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद खुदा को वो छेदेंगे, उसे सताएंगे, उसे दुख देंगे। सो आगे चलकर हम देखेंगे कि जैसे यहां पर यसु मसीह नजदीक है और 31वीं आयत में वो अपने शिगिर्दों से बात करते हुए कहता है कि हम यरूशलम को जाने को हैं और वहां पर मेरे साथ क्या होगा, लिखा है क्योंकि वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे। ये यसु मसीह के साथ होने वाला है। जब हम इस बयान को पढ़ते हैं जो लूका तबीब ने आज से 2000 साल पहले ईमानदारों के लिए रकब किया कि यसु मसीह के साथ क्या होने वाला है, और यसु मसीह अपने शिगिर्दों से बात करते हुए उनसे कहता है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो खुदा की बादशाही को अभी जाहिर करेगा, लेकिन यसु मसीह उन्हें बताता है कि इससे पहले कि ये हो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं क्यों यहां पर हूं। नबियों की मार्फत वो की गई सारी नबूवतें पूरी होंगी जिसमें मैं रूमी हुकूमत के हवाले किया जाऊंगा, वो और तमाम लोग मेरी नस्ल के लोग मुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे, मुझे बेइज्जत करेंगे, मुझ पर थूकेंगे। और 33वीं आयत में लिखा है और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और वो क्या होगा, तीसरे दिन मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा, तीसरे दिन वो अपने कॉल के मुताबिक मुर्दों में से जी उठेगा। और ये जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं कि इब्ने हक के इब्ने आदम के हक में पूरी हो, जबूर 22 के मुताबिक और कौमें और कौम के सब बुजुर्ग और उस वक्त के यहूदी फकी फरीसी क्या करेंगे, यीशु मसीह की मुखालफत करेंगे और पिलातूस क्या करेगा, यीशु मसीह को सलीब का देने का हुक्म देगा। सो ये बातें होने को जाने को है लूका तबीब के बयान के मुताबिक, इसलिए कि वो यरूशलम के नजदीक था, यानी कि यीशु मसीह यरूशलम के नजदीक था और तमाम शिगिर्द क्या करते थे, गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही जाहिर होने वाली है। यीशु मसीह है जिसने बनीनु इंसान के लिए तमाम दुख को सहा। और हम देखते हैं 34वीं आयत में, लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात ना समझी, शिगिर्दों को कोई भी बात समझ नहीं आई कि यीशु मसीह किस भेद के बारे में बात कर रहा है, और ये कॉल उन पर पोशीदा रहा और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। सो यहां पर यीशु मसीह उन्हें बताने को जा रहा है एक तमसील की सूरत में, जबकि वो यरूशलम के नजदीक है। और जब आप लूका की इंजील का मुतालिया करते हैं, 20वें बाब से ये बात शुरू होती है कि वो यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाएंगे, वो यीशु मसीह को पिलातूस के पास हाजिर करेंगे और उस पर क्या होगा, सजा का हुक्म दिया जाएगा और उसे मुजरम ठहराया जाएगा। सो यहां पर यीशु मसीह उनसे तमसील कहता है और तमसील में क्या लिखा है, पस उसने कहा, यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। इस तमसील में जो अमीर आदमी है वो यीशु मसीह को जाहिर करता है। और दूर दराज मुल्क को जाना चलना, ये यीशु मसीह का जमीन पर आना, पैदा होना, सलीब का दुख उठाना, मुर्दों में से जी उठना और फिर उसके बाद 40 दिन तक शिगिर्दों से कलाम करते रहना और फिर आसमान पर उठाए जाना को जाहिर करता है। और एक अमीर दूरदराज मुल्क को चला, यानी कि यीशु मसीह जमीन पर आया, मर गया, मसलूब हुआ, दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर मत्ती रसूल के मुताबिक कि वो क्या शिगिर्दों ने क्या देखा कि वो आसमान पर उठाया गया और यीशु मसीह ने उनको क्या दी, एक जिम्मेदारी दी। और यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर भी यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को तैयार कर रहा है और उन्हें सिखाना चाहता है कि मेरे जाने के बाद तुम को क्या करना होगा, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है और तुम क्यों इस जमीन पर हो। सो एक अमीर आदमी दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। दूर दराज मुल्क को जाने से मुराद यीशु मसीह, जैसा कि इमाल की किताब में हमें जिक्र मिलता है, इमाल की किताब में भी लूका तबीब इस पहले रसाले को बयान करने के बाद जो के लूका तबीब ने लूका की इंजील को लिखा, फिर उसके बाद वो थेफलस बादशाह के लिए इमाल की किताब को लिखता हुआ नजर आता है। और यहां पर वो बयान देता है जब यीशु मसीह पहाड़ पर था और यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया और फरिश्तों ने शिगिर्दों से यही कहा कि यही यीशु जो आसमान पर उठाया गया है, फिर वापस तुम इसी तरह उसे उतरता हुआ वापस देखोगे। सो ये बात यहां पर लूका तबीब लिखते हुए कहता है और यीशु मसीह ने ये बात अपने मुतलका कही कि मुझे जाना जरूर है, مجھے جانا ضرور ہے، جیسا کہ یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یسوع مسیح کی پہلی آمد کا مقصد، یسوع مسیح کا مجسم ہونے کا مقصد، یسوع مسیح کا پیدا ہونے کا زمین پر مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اس زمین پر آیا ہے تاکہ وہ تمام دنیا کے گناہوں کے لیے کیا کرے، اپنی زندگی کا کفارہ دے۔ اور اسی لیے یوحنا نبی کہتا ہے، پہلا باب اس کی 29 آیت میں، دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس میں آپ شامل ہیں، اس میں میں شامل ہوں، ان میں اس میں ہر ایک شامل ہے۔ اور یہ یسوع مسیح کا آنے کا اس زمین پر مقصد ہے، اور یہ ہے یسوع مسیح کی پہلی آمد، یسوع مسیح کا پہلی دفعہ زمین پر آنا۔ اور کیا لکھا ہے؟ دور دراز ملک کو چلا، یعنی کہ یسوع مسیح نے زمین پر آ کے اس مقصد کو مکمل کیا، صلیب پر سے قبر میں گیا، جی اٹھا اور پھر آسمان پر چڑھ گیا۔ اور کیا لکھا ہے؟ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، افسیوں کا خط اس کا پہلا باب، اس کا پہلا باب، جب یسوع مسیح مردوں میں سے جلایا گیا تو وہ کہاں پر گیا؟ جب آسمان پر اٹھایا گیا تو بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ یہاں پر لکھا ہے، 20 آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا، افسیوں پہلا باب، جو اس نے یعنی کہ خدا باپ نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہیں طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ یسوع مسیح خدا باپ کی داہیں طرف آسمان پر جا بیٹھا، اور پھر وہ واپس آئے گا۔ اور یہ ہے یسوع مسیح کی دوسری آمد، ایمانداروں کو 1000 بادشاہی دینے کے لیے اور ابدی زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے لیے، جس کے بارے میں یہ آج آپ کو صرف اور صرف تعارف کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اس تمثیل میں کیا گہرا بھید، لوکا طبیب یسوع مسیح کے سنے ہوئے الفاظوں کو کس طرح وہ بیان کر رہا ہے۔ ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے آئے، پھر وہ بادشاہی حاصل کر کے آئے گا۔ سو آج وقت کھوڑے کے مطابق میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس میں سے چند ایک اور باتوں کو دیکھیں۔ سو 12 آیت میں دیکھا، پس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور موا، دفن ہوا، جی اٹھا۔ اور یوحنا کے مطابق اس نے اپنے شاگردوں کو کہا، یوحنا 14 باب، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، جب واپس آؤں تو تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں، جہاں میں ہوں وہاں میرے لوگ، میرے خادم، میرے ماننے والے بھی ہوں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ خدا کی حضوری، خدا کے سامنے ابدیت کی زندگی۔ سو دوسری بار بادشاہی حاصل کرنے سے مراد یسوع مسیح جب اس دنیا میں واپس آئے گا۔ سو 13 آیت میں لکھا ہے، اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دی اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا۔ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا، یہ حوالہ ایمانداروں کے ساتھ اور اس وقت کے ساتھ جب یسوع مسیح زمینی زندگی پر زندہ تھا، جیتا تھا، صلیب کا دکھ اٹھانے سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں کو یہ بات تمثیل میں کہی کہ میں تمہیں جانے سے پہلے ایک مقصد دے رہا ہوں، میں تمہیں جانے سے پہلے زندگی گزارنے کے لیے ایک کام، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک مقصد دینا چاہتا ہوں، تاکہ تم اس مقصد کے مطابق زندگی گزارو، نہ کہ بغیر جانے، بغیر سمجھے اپنی زندگی کو زمین پر ظاہر کرو، سو یہاں ضائع کرو۔ سو یہاں پر یسوع مسیح جو 10 نوکر ہیں، یہ ایماندار ہیں، کلیسیائی ایمانداروں سے خداوند کا کلام مخاطب ہے، اور ہر ایک ایماندار کو خداوند نے زندگی میں مقصد دیا ہے، خداوند نے روحانی نعمتیں اور برکتیں دی ہیں۔ اور سب سے پہلے جب کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو روح القدس کی مموری کو حاصل کرتا ہے۔ اور روح القدس کی مموری کس لیے دی گئی ہے؟ کس لیے روح القدس ایمانداروں کی زندگی میں ظاہر ہوا؟ میرے ساتھ دیکھیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب، यहां पर क्या पालूस उसूल बयान करता है क्रंथस की कलीसिया से बात करते हुए। सातवीं आयत में कहता है, लेकिन हर शख्स में रूह का जहूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। रूह का जहूर यानी कि रूह का नाजल होना, रूह की मामूरी हासिल होना, रूह का जिंदगी में आना यानी कि रूहुल कुद्दस की मामूरी को हासिल करने का क्या वजह है, ताकि ईमानदार की जिंदगी में फायदा पहुंचे। और आपको रूहुल कुद्दस की मामूरी इसीलिए दी गई है। यहां पर जो 10 नौकर हैं वो हर एक ईमानदार को जाहिर करते हैं। 10 नौकरों को में से हर एक को अशरफी दी गई है। अशरफी यानी कि रुपया पैसा। उस वक्त के मुताबिक यीशु मसीह ने तमसीली तौर पर कहा, कहावती तौर पर कहा, भेद के तौर पर कहा, जो हर एक ईमानदार की जिंदगी में रूहानी नेहमतों को जाहिर करता है। उन 40 नेहमतों को जाहिर करता है और खासकर रूहुल कुद्दस की मामूरी को जाहिर करता है कि इस जमीन पर क्या करें, मकसद के तहत जिंदगी गुजारें। जब आप मिसाल के तौर पर कोई भी किसी दुकान को शुरू करता है, उसकी जिंदगी में एक मकसद होता है कि मैंने इतना पैसा अपनी दुकान में लगाया है, मैं इससे दुगना कमाऊंगा। ये उसका मकसद होता है। यीशु मसीह ने हमें यहां पर आवारागर्द जिंदगी, बेअमीद जिंदगी, भूले हुए खोए हुए लोगों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए नहीं छोड़ा। रूहुल कुद्दस का जहूर जो कि आज से 2000 साल पहले हुआ और हर ईमान लाने वाले को उस वक्त मिलता है जब वो यीशु मसीह को कबूल करता है। सो आपको रूहुल कुद्दस की मामूरी इसीलिए दी गई है, आपको नेहमतें इसीलिए दी गई हैं, जिस तरह यहां पर कहा गया है, उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना, मेरे वापस आने तक लेन देन करना। जैसे मत्ती की अंजील उसके 28वें बाप में यीशु मसीह ने जाते वक्त अपने शिगिर्दों को क्या दिया, इख्तियार दिया, अपने शिगिर्दों को क्या किया, कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया है, पस तुम जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ और उन्हें बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या दो, बपतुस्मा दो और उन तमाम बातों की मनादी करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। उस वक्त शिगिर्दों को एक क्या दिया गया है, मकसद दिया गया है उनकी जिंदगी का। आज आपके लिए एक मकसद है और आपको रूहानी बरकतें हासिल हैं। जैसे यहां पर कहा गया है कि इस अशरफी से उनसे कहा कि लेन देन करना यानी कि इससे कमाना। आगे चलकर हम देखेंगे वक्त की कमी के वजह से हम इस बात को आगे चलकर सीखेंगे, लेकिन यहां पर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको मसीह यीशु में हर तरह की रूहानी नेहमतें बख्शी गई हैं, जिसमें 40 रूहुल कुद्दस की 40 निजात पाने पर वो नेहमतें बख्शी गई हैं, जो जमानत के तौर पर हैं, जिसमें हमेशा की जिंदगी है कि आप हमेशा की जिंदगी को खो नहीं सकते, जिसमें रूहुल कुद्दस की मामूरी है और वो मामूरी आपको हासिल है। आपको उसके लिए जोर से चलाने और पीटने की जरूरत नहीं है। अगर आप जैसा कि ईमानदार हैं, आपको वो मामूरी हासिल है, आप खुदा का मस्कन हो। और उसने जैसे शिगिर्दों को एक मकसद दिया कि जाके लोगों को मेरे बारे में तालीम दो, वैसे ही आपको एक मकसद दिया गया है। और वो मकसद क्या है, यीशु मसीह की दी हुई नेहमतों को, यीशु मसीह की दी हुई जिंदगी जो आपको हासिल है उसको उसके लिए गुजारना। सो मेरे साथ एक हवाला निकाले, इस पर आज हम खत्म करेंगे। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाप, दूसरा करंथियों 5वां बाप, इस बात को गौर से सुने। 13वीं आयत में लिखा है, पालूस रसूल कहता है, अगर हम बेखुद हैं यानी कि बेखुद अपने आप से बाहर यानी के हैरान हैं, बहुत ज्यादा بہت زیادہ تعجب میں ہیں. کس لیے؟ اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے, یعنی کہ وہ کام جو خدا نے ان کی زندگی میں کیا اس سے وہ حیران کن ہیں, اس سے وہ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ امیز ہیں, یہ انگلش کا لفظ ہے, یعنی کہ حیران کن. اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے, اگر ہوش میں ہیں تو تمہارے واسطے. پالوس رسول ہر ایک ایماندار کو کہتا ہے کہ ہم اس زمین پر اگر حیران کن یا بڑی ہی خوشی میں یا اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ تم سوچتے ہو کہ ہم کملے ہو, تو وہ کہتا ہے خدا کے واسطے, کیونکہ وہ اس محبت سے, اس برکت سے, اس ذمہ داری سے جو اس کو دی گئی ہے اس سے واقف ہے. اور کہتا ہے کہ اگر ہوش میں ہوں, یعنی کہ میں پورے طریقے سے جانتا ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, ہوش میں ہوں تو تمہارے واسطے. اور 14 آیت میں کہتا ہے ہمارا ہوش میں ہونا اور بے خود ہونا کیوں ہے, کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے. مسیح کی محبت کہاں پر نظر آتی ہے؟ سلیب کے اوپر نظر آتی ہے. جب متی کی انجیل میں یسوع مسیح اپنے باپ سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. وہاں پر جو بات چل رہی ہے کہ وہاں اور کوئی راستہ نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, کوئی ایسی پوڑی یا ایسا رسہ نہیں بنا جو خدا باپ تک بنی نو انسان کی رسائی اور پہنچ کروا دے. سو یسوع مسیح وہاں پر بات کر رہا ہے کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, یعنی کہ ہو سکتا ہے تو کوئی اور چیز قربان کر دے تاکہ تیرا ملاب بنی نو انسان کے ساتھ ہو جائے. لیکن کلام کہتا ہے کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے, ضرور ہے کہ وہ غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے, ضرور ہے کہ وہ موت کا مزہ چکھے تاکہ آپ زندگی حاصل کرے. اور یہاں پر پالوس رسول کہتا ہے ہم کس لیے مجبور ہیں, ہمارے دل میں کیوں یہ تڑپ ہے, ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے, ہم کیوں یہاں پر خداوند کے لیے دکھ میں ہیں, خداوند کے لیے یہ بات اور یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے, اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سب کے واسطے, اس لیے کہ جب ایک سب کے واسطے موا تو سب مریں گے. یسوع مسیح سب کے واسطے موا ہے تاکہ ہم روحانی زندگی کو حاصل کریں. آج آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج آپ کس لیے مجبور ہیں؟ آج آپ کس لیے چرچ میں آئے ہیں؟ کیوں کہ مسیح کی محبت؟ یس, اسی لیے آئے ہیں تاکہ مسیح کی محبت. اور مسیح کی محبت کیا ہے؟ خدا نے دنیا سے, یعنی کہ آپ سے, ہر ایک سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور کبھی بھی ہلاکت, کبھی بھی خدا سے علیحدگی کا سامنا نہ کرے بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرے. سو آپ کو خدا نے زندگی جینے کا مقصد دیا ہے, آپ کے لیے ایک ذمہ داری ہے. آپ مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ایک مقصد لے کر اس زمین پر نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, اسے جاننے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بائبل مقدس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے, بائبل مقدس کو اپنی روحانی روٹی جاننے کی ضرورت ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اور یہ ہے بائبل مقدس, خدا کا کلام, जिससे आप रूहानी तौर पर जीते रहेंगे, आपकी रूहानी तरक्की होगी। आज अगर कोई खिदमत में है तो वो किस लिए खिदमत में है? क्या मसीह की मोहब्बत उसे मजबूर करती है या फिर वो अपने फायदा के लिए उस खिदमत में है? अगर ऐसी तहरीक है तो आगे चलकर हम देखेंगे कि बहुत दफा जिस तरह के तीसरे नौकर ने किया, उसने जो मकसद, उसको जो जिंदगी गुजारने के लिए खुदा ने मेहनतें बरकतें दी, उसे उसने इस्तेमाल नहीं किया। सो याद रहे, अगर आप खिदमत में शामिल हैं, अगर आप कुछ भी खुदावंद के मोहब्बत के और मजबूर मोहब्बत की मजबूरी के बायस कर रहे हैं तो खुदावंद आपको बरकत दे, अगर नहीं तो फिर आप अपनी उस नेहमत को जाया कर रहे हैं। दुरुस्त तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करें और आगे फिर हम अगले हिस्सा में देखेंगे इन तीन नौकरों के बारे में। और खासकर आज सिर्फ आपके साथ तारफ था और उम्मीद है कि रूहुल कुद्दस आपकी रहनुमाई करेगा और आप को आसमानी मकामों पर इफ़सियों पहला बाब 3 आयत हर तरह की रूहानी नेमते बख्शी गई हैं, हर तरह की रूहानी नमते। सो आज इस सवाल को लेकर जाएं कि आप इस सर्दी में क्यों यहां पर हैं? मसीह की मोहब्बत के लिए। सो अपने आप से सवाल करें कि क्यों आज आप दुख उठा रहे हैं? क्योंकि मसीह के लिए। और यीशु मसीह ने कहा है, मुबारक हैं जो मेरे नाम के सबब से सताए जाएंगे और दुख उठाएंगे, क्योंकि आसमान पर उनके लिए बड़ा अजर होगा। हर दिन, हर मिनट यही बात हमें मजबूर करे, यही बात हमारे दिल में आग पैदा करे कि मसीह ने हमसे मोहब्बत की, इसलिए हमें उससे मोहब्बत करने की जरूरत है। अगर कोई और चीज हमें तहरीक देती है, कोई और दुनिया की चीज, दुनिया की और कोई चमकती हुई चीज हमारी सोच हमारे ख्याल में है तो उससे कोई फायदा नहीं। अपनी जिंदगी में उन बरकतों को, नेमतों को जानने के लिए बाइबल मुकद्दस को अपना उस्ताद बनाएं और रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में जो भी खुदा ने कादम आपकी रूह के लिए मुकरर किया है, वो भाई जुल्फकार हो सकते हैं, वो मैं हो सकता हूं और कोई और हो सकता है, मुसलसल तौर पर बाइबल मुकद्दस की तालीम को हासिल करें ताकि आप अपनी जिंदगी के मकसद को जाने के आप क्यों हैं। आए हम खुदावंद के हजूर झुकें कि आप क्यों इस जमीन पर हैं, क्यों आज आप जिंदा हैं, क्यों खुदा ने आपको काबिलियत, सलाहियत और कुवत और ताकत और हिकमत और दनाई दी है, इसका इस सवाल को अपने साथ लेकर जाएं और फिर पूछें कि खुदा बाप मैं किस तरह अपनी जिंदगी में तेरी मर्जी को पूरा करूं, तेरी मर्जी को पूरा करती रहूं। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें। खुदा बाप इस कलाम के हिस्सा से जो खुदावंद बीज बोया गया है सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और खुदावंद खुदा जे जो बीज है कसरत से 100 गुना फल लाए और हर एक दिल को खुदावंद खुदा इस कलाम को कबूल करने की हिकमत और दनाई दे। जो कुछ खुदावंद खुदा जरूरी है उसे कसरत से कबूल करने की हिकमत और दनाई दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।